मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFAIS के आज 29 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं राज्यों के जो हमारे उच्च सदन हैं उसको लेकर के अभी जो एक विवाद की स्थिति बन रही है या यूं कह लीजिए कि बहस छिड़ गई है उस पर कुछ रोशनी डालूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने रामसर स्थलों के बारे में सुना कि हमारे जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत के 10 और नए स्थल रामसर स्थलों के रूप में शामिल कर लिए गए हैं और इस तरह से हमारे यहाँ ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, यानी कि पहले 27 थी। ये बिल्कुल अपडेट है। इससे पहले आप जब पुस्तकों में रामसर स्थलों की सूची देखेंगे तो उसमें आपको 27 की ही सूची मिलेगी, अब उसमें 10 जोड़ दिए गए हैं तो 10 काफी हैं, तो अब ये 37 हो गई है। इसका मतलब है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। इस पर मैं हो सका तो कभी मुख्य विषय के तहत बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मेन एग्जामिनेशन में सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है और उसमें बकायदे ये कहा गया है कि कुछ स्थलों के आप नाम लिखिए। इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे, आप अपने दिमाग में इस टॉपिक को दर्ज कर लें। हो सकता है कि मैं इस पर बातचीत न भी कर पाऊं अगर दूसरे महत्वपूर्ण विषय आ जाए तो आप अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। दोस्तों आज के अखबारों में आपने इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा होगा, जो निवेशक है राकेश झुनझुनवाला उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है, तो खासकर इसको लेकर के मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेबी के बारे में आप जानते हैं, ये हमारा जो शेयर बाजार है उसका नियामक संस्थान है कि शेयर बाजार हमारा सही तरीके से काम करता रहे, उसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो, तो इसकी देखरेख करने वाली जो संस्था है वो है सेबी, राइट। तो सेबी ने ही इन पर यह आरोप लगाया है। अब मैं कुछ शब्दों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक शब्द होता है इन्वेस्टर और दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर से ही शब्द बना है ट्रेडिंग। तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है कि शेयर खरीद लेता है, अपने पास रखे रहता है, उसको लगता है कि इसकी कीमत बढ़ेगी और वो इंतजार करता है साल 2 साल 4 साल तक, और जब शेयर बढ़ जाते हैं तो बेच देता है, या जब लगता है कि अब शेयर नहीं बढ़ेंगे तो घटते चले जा रहे हैं तो उन्हें बेच देता है। इस तरह से उसे लाभ हानि होती रहती है, तो इन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लंबे समय के लिए शेयर खरीदता है। लेकिन ट्रेडर्स उन्हें कहते हैं जो शेयर लंबे समय के लिए नहीं खरीदता, अभी खरीदा आज ही, मान लीजिए कि रेट बढ़ गए तो बेच देगा, या रेट घट गए आज ही और उसे लग रहा है कि नहीं कल और घट जाएंगे तो उसे बेच देगा। इस तरह से यूं कह लीजिए कि वो उसकी ट्रेडिंग करता रहता है, लेता रहता है बेचता रहता है लेता रहता है बेचता रहता है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रेडर, और जो क्रिया है उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो जो राकेश झुनझुनवाला हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है उन पे आप दोनों शब्द देखेंगे, इन्वेस्टर भी इन्हें कहा जाता है और ट्रेडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही काम करेंगे। अब इसमें तीसरा शब्द है इनसाइडर। इनसाइडर का क्या मतलब है? जो उस साइड में है, या आप कह लीजिए कि अंदर का आदमी। इनसाइड का मतलब हो गया ना कि अंदर का आदमी। दूसरे शब्दों में अगर आप थोड़ा सा नकारात्मक शब्द यूज करना चाहे निगेटिव सेंस में तो वो हो गया भेदिया, घर का भेदिया, मतलब उसको अंदर की सारी चीजें मालूम है और वह अंदर की इन चीजों को बाहर बता देता है, तो उसे कहते हैं भेदिया। तो अब आप देखिए कि शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में कंपनी है ना, कंपनी के शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, कंपनी का बोर्ड है ना, बोर्ड है उसमें लोग हैं और कंपनी का कोई ना कोई मालिक है, MD है, CEO है, चेयरमैन है, ये सब कंपनी के लोग हैं, तो ये अपनी कंपनी के बारे में जानते रहते हैं। तो अपनी कंपनी के परिणामों को जानने के आधार पर अगर वो शेयर ले रहे हैं और बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सूचना के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। हालांकि मेरी ये बात थोड़ी सी आपको पटांग सी लगेगी कि भाई उनको तो मालूम ही रहता है अपनी कंपनी के बारे में, तो ऐसा कर सकते हैं, तो इसके भी अपने तरीके हैं। समय की कमी के कारण मैं उन तरीकों को यहां आपके सामने नहीं रख सकता, अदरवाइज ये कह लीजिए कि यही मुख्य विषय हो जाएगा। केवल यही नहीं है, बल्कि दूसरी कंपनी की भी अंदर की जानकारी के आधार पर जब आप शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं, जैसे आपको पता लगा कि उस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं, आपको किसी ने सूचना दे दी अंदर के उधर के आदमी ने, और आपने खूब शेयर खरीदने शुरू कर दिए कि कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो शेयर के रेट बढ़ेंगे, या आपको पता लग रहा है कि इस बार तो कंपनी का नुकसान होने जा रहा है, इस सूचना के आधार पर आपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, तो इन्हें ही कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडर, यानी कि जो अंदर की सूचना के आधार पर शेयर का लेन देन करते हैं, और इसे बहुत बड़ा अपराध माना गया है अमेरिका वगैरह में, तो इसे बहुत बड़ी सजा का इसके लिए प्रावधान है। तो दोस्तों, ये इनसाइडर ट्रेडिंग, अखबारों में आपने पढ़ा होगा शायद, न्यूज में ये बात नहीं थी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसने ये मांग की थी कि अफ्रीका से चीता टाइगर मंगाने की अनुमति दी जाए, और उसका कारण यह था कि जो भारतीय चीता हैं, टाइगर हैं, इंडियन टाइगर, वो लगभग समाप्त होने को हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे अब प्राधिकरण को अनुमति दे दी है कि आप टाइगर अफ्रीका से मंगा सकते हैं, और यहां स्पेशली याद रखिएगा कि अफ्रीका के नामीबिया से टाइगर आप मंगा सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं नामीबिया गया हुआ हूं, और वहां के जो वन जंगल हैं उन जंगलों में भी हम लोगों ने आधा दिन बिताया था नामीबिया। तो नामीबिया से टाइगर हम मंगाएंगे, और उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुकूल क्षेत्र में रखा जाए जो उनके अनुकूल हो। इसके लिए 3 अभ्यारण्य निश्चित किए गए हैं, क्षेत्र निश्चित किए गए हैं, उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है और 1 राजस्थान में है। जब स्थान निश्चित हो जाएगा तब फिर से वह स्थान एक प्रकार से आपके प्री एग्जामिनेशन की एक सूचना बन जाएगी। तो अभी आपको जो जानना है वो है नामीबिया से टाइगर मंगाया जाएगा। दोस्तों, एक और खबर अखबारों में है जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, और चूंकि नई है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि दूसरे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। अंडर वाटर टनल, पानी के नीचे टनल, सुरंग, ये हुगली नदी में बनाई गई, कैलकाटा में बनाई गई, जिसको हम अब कहते हैं कोलकाता, वहां हुगली नदी है आपको मालूम है, तो उसमें एक टनल बनाई गई है, अंडर वाटर टनल, यानी कि जलगत, भूमिगत की जगह कह दीजिए जलगत, ये सुरंग है जो 520 मीटर लंबी है और पानी के 36 मीटर गहराई में बनाई गई है। सोच करके देखिए कि कैसे बना होगा, और कहा जाता है कि इसको बनने में भी ज्यादा से ज्यादा 65-70 दिन लगे हैं। इतनी गहराई में जाकर के टनल बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये भारत का पहला अंडरग्राउंड टनल है, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, और आज का जो हमारा ये मुख्य विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आपको मालूम है कि जैसे हमारे संसद में 2 सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है, इसी तरह से राज्यों में भी 2 सदन है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों ने अपने यहां के उच्च सदन को समाप्त कर दिया है, कुछ राज्यों में है। वहां जो उच्च सदन है उसे हम कहते हैं विधान परिषद, और जो निम्न सदन है उसे हम कहते हैं विधानसभा। बिल्कुल जैसा हमारा लोकसभा, जैसी हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उसी पैटर्न पर वहां भी चलता है। विधानसभा के चुनाव सीधे होते हैं, जिन्हें हम MLA कहते हैं उनके मेंबर्स को। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव सीधे होते हैं, यानी कि जनता उसमें सीधे मतदान करती है, इनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। वहां विधान परिषद है, विधान परिषद के चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग है, राज्यसभा के पैटर्न जैसा नहीं है, क्योंकि वहां विधानसभा, विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसे बहुत से फार्मूले हैं और बहुत लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल किए जाते हैं। यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से निर्देशित करना चाहूंगा कि इस पर जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है विधान परिषदों के चुनाव को लेकर के, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, पहले सुनिएगा और इसके बाद फिर किताब से आप पढ़िएगा, एकदम आपके समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको राज्यसभा पर भी लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, और खासकर राज्यसभा के लेक्चर में मैंने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है, बहुत विस्तार के साथ और व्यावहारिक स्तर पर समझाते हुए, ब्रिटेन के साथ तुलना करते हुए यह बताया है कि राज्यसभा बनी रहनी चाहिए या राज्यसभा समाप्त कर दी जानी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो विधान परिषद को लेकर के प्रश्न उठ रहा है उसमें यही सवाल पैदा हो रहा है कि इन विधान परिषदों को बनाए रखा जाना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए, यह मामला हुआ का क्या है। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश ने अभी विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके अपनी राजधानियों को 3 जगह डिवाइड करने का फैसला किया है। इस पर हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद फिर से विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम अपने यहां के विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करना चाह रहे हैं। ये और जब उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है तब से ये बहस में अभी बात शुरू हुई है, और अभी दो दिन पहले ही ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अब आप देखिए कि जो उन्होंने कहा है वहां की चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश की, कि वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो विधान परिषद है ये हमारे रास्ते का रोड़ा है। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, क्योंकि जो विधान परिषद है उसमें दूसरी पार्टी का बहुमत है, और आपको मालूम है कि कोई भी बिल पारित होने के लिए दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है, और इसके बाद फिर गवर्नर उस पर साइन करेंगे। ठीक केंद्र की तरह कि लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो आप केंद्र में भी कभी कभी ये बात सुनते हैं कि लोकसभा में तो चूंकि बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल की सरकार ही होती है, ठीक इसी तरह से विधानसभा में भी बहुमत दल का नेता होता है, तो सरकार विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां से तो किसी भी बिल को पारित करा लेती है। रुकता कहां है? केंद्र में जाकर के राज्यसभा में मामला रुकता है, और राज्यों में जाकर के विधान परिषद में रुक सकता है, बशर्ते कि वहां जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत न हो, और अभी आंध्र प्रदेश में यही हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस विधान परिषद को खत्म कर दो तो हमारे सारे एक्ट बड़े आराम, हमारे सारे बिल बड़े आराम से पारित होने लगेंगे। तो अब आप देखिए कि यहां आपको सीधे सीधे राजनीति दिखाई दे रही है। अगर विधान परिषद को किसी दूसरे आधार पर खत्म करने का निर्णय लिया जाए कि भाई अब ज्यादा उपयोगी नहीं रह गई है, यह बहुत ही खर्चीला मामला है, तब तो एक बात बनती है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे रास्ते में रोड़ा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं ये इंगित हो रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो एक तरह से तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहा है? लोकतंत्र तो है ही इसी बात की सहमति और असहमति, तो यहां जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, राइट? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर खत्म करना है तो क्यों करना है, खत्म नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो उच्च सदन की जो स्थापना की गई थी वो यही सोच करके की गई थी कि भी बहुत से लोग डायरेक्ट चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो चुनाव में तो नहीं आना चाहते लेकिन इंटेलिजेंट हैं, जिनकी हमें हमारे देश को जरूरत है, उन्हें उच्च सदन में भेज दिया जाए, और यहां से जो बिल पारित होंगे उन पर वो बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी उच्च सदन रखा गया है। तो अगर आप इसे बिल्कुल समाप्त कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यह होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी एक तानाशाही दिखाई देगी कि वो जो चाहे फिर वो कर सकती है, और यहां जो लोग चुन करके आते हैं वो आपको मालूम है कि किस तरीके से धन बल पर धीरे धीरे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब हमारे यहां दल बदल कानून ही अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है तो उस स्थिति में विधानसभा पर और भी ज्यादा संदेह बढ़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या सच में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे समाप्त किया जाना चाहिए? बहुत से स्टेट में यह नहीं है, बहुत से शुरू में तो सभी में थे लगभग, इसके बाद कुछ राज्यों ने खत्म कर दिए। तो अब आप देखिए कि मामला क्या हो रहा है, यहां एक थोड़ी सी जटिलता को समझने की कोशिश कीजिए, और यहां पर थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा। 4 राज्य हमारे अभी ऐसे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम। इन 4 राज्यों ने अपने यहां से प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे यहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। ये कह रहे कि हमारे यहां होनी चाहिए। एक आपको यहां नियम, एक आपको संविधान का जो प्रावधान है वो बता दूं कि राज्य प्रस्ताव पारित करने के बाद फिर उसको केंद्र के पास भेजते हैं, जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती है तब तक फिर वो न तो जो वहां की काउंसिल है वो खत्म हो सकती है और न ही वहां नई काउंसिल बन सकती है। पहले प्रस्ताव राज्य की विधानसभा भेजेगी और इसके बाद केंद्र उस पर अनुमति देती है या नहीं देती है। तो इन 4 राज्यों ने भेजा हुआ है, ये केंद्र से अभी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि संसद की स्वीकृति जरूरी है। ये आपको प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि तमिलनाडु ने 1976 में अपने यहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल समाप्त कर दी, ठीक है, 1986 में, और संसद ने भी उसे बकायदे दे दी तो समाप्त होगी। इसके बाद फिर 2 बार फिर वहां की विधानसभा ने यह प्रस्ताव भेजा कि नहीं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना चाहते हैं, अब लाना चाहते हैं तो उसकी भी संसद ने स्वीकृति दे दी, लेकिन अभी तक तमिलनाडु में लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित नहीं हो पाई है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि बहुत सुविचारित प्रस्ताव नहीं है, यहां भी राजनीति काम कर रही है। और यहां आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे समाप्त करना होगा। वो दोस्तों ये कि बकायदे इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, संसदीय समिति बनी थी, और उस संसदीय समिति ने अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया या सिफारिश की है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक ज्यादा हो गया है, इनफैक्ट विधायी उतना अधिक नहीं रह गया है। तो दोस्तों ये आज के मुख्य विषय के बारे में कुछ जानकारियां थी। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने ढंग से उसे देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, बहुत से ईमेल मिले हैं, इसके लिए और ज्यादा धन्यवाद देता हूं। जो मुझे ईमेल मिले हैं और खासकर केस स्टडी के मामले में, उसमें मीरा पिंगले जो अमरावती महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और काफी कुछ सही निष्कर्ष अपनी ओर से दिए हैं। तो मीरा जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो अन्य दोस्तों के नाम हैं, उनमें है प्रेम मालवीय भोपाल से, हेमंत नागर, निहारिका मीना, नीतू सेजवाल, रोहन उत्तराखंड से, विकास केशरी मोतिहारी बिहार से, हंसराज दास अलवर राजस्थान से, कपिल सिंह, अर्जुन कुमार औरंगाबाद बिहार से, सृष्टि दहाले, श्वेता और सौरभ यादव कानपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।